ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय सख पुनरागः प्रेयसा प्रेषितः किम्। वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्गा। नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वान्। सततमुरसि सौम्या श्रीर्वधूः साकमास्ते। श्री राधा अपने प्रियतम की बोली और उनके शरीर के स्पर्श का, विशेषकर नखच्छत का स्मरण करके बिल्कुल मूर्छित हो रही हैं अपना उस सुख को पाने के लिए। जब मूर्छा में पड़ गई तो भ्रमर कुछ देर दूर हुआ और उद्धव पक्ष में यह अर्थ होगा कि उद्धव जी जल आदि लेने के लिए दौड़े राधा रानी को होश में लाने के लिए, उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए, क्योंकि जो वाक्य हैं वो उद्धव जी के लिए भी चलेंगे। तो कुछ देर के बाद जब राधा रानी की मूर्छा छूटती है तो वे विचार करती हूँ, मधुकर मथुरा से लौट करके आ रहा है या कुछ दूर जा करके आ रहा है, और उद्धव जी भी जल लेकर के आए थे तो उनके प्रति भी वही भाव करके कह रही हैं। छात स्वस्थो तिथा स्वस्था उत्थिता सती। कुछ देर के बाद राधा रानी स्वस्थ हुई और उठी बैठी। मधुपम अपि आगतम दृष्ट्वा आह, और मधुप भी उसी समय आए, भंवरा आया तो कहती प्रियति। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं उद्धव पक्षे च संभ्रम भरेण जलाद्य जलादि आहरणार्थम वेगेन गतम तम पुनरागतम दृष्ट्वा। उद्धव जी भी जल लेने के लिए गए तो और फिर आए तो उद्धव जी को देख कर कहती हैं और भंवरे को देख कर कहती हैं। फिर जीव गोस्वामी जी लिखते हैं ततो भ्रमर स्वभाव तो व्यवधानम अपि प्राप्तम वा प्रदेशांतरम एवं गतम वा। भ्रमर का स्वभाव है कुछ दूर व्यवधान, कुछ देर के लिए व्यवधान किया होगा, थोड़ी दूर चला गया होगा प्रदेशांतर में, तो इनको ऐसा समझ में आया होगा कि वो अब चला गया। निजोन्माद मूर्छयो रेक तरतस तत्र स्थितम अननुसंधित। अथवा मूर्छा और उन्माद की दिव्य स्थिति में उन्हें भ्रमर के उपस्थिति का पता नहीं चला, तो इसीलिए उसको कुछ काल तक देख करके सहज प्रेमोत्कंठा बस ऐसा मान रही हैं कि मैंने उसकी उपेक्षा किया इसीलिए वो गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अथोन्मादेन तत्रैव भ्रमन्तम अपि तम भ्रमरम अनुसंधाय। दिव्य उन्माद में राधा रानी थी इसीलिए वहाँ भ्रमण करते हुए भ्रमर को भी वे देख नहीं पाई, और तब उन्होंने इस प्रकार सखेद परामर्श किया, सोचा हंत हंत हाय हाय मेरी तीक्ष्ण कठोर वाणी से संतप्त होकर यह दूत मथुरा चला गया, उसे वहां जाकर हमारे सारे वृत्तांत को सुनाया, पर सुनाने के बाद भी कृष्ण हमारी उपेक्षा नहीं किए, इसको फिर से भेजे हैं, तो कलहांतरिता नायिका की जो दशा होते इस तरह से ये विश्वास करें कृष्ण प्रेम के सागर हैं और हमारे दोषों को न गिनकर हमारे पास दूत भेजे हैं, अतः पुनः उस दूत से इस तरह बात करती। प्रिय सखा हे प्रियस्य कृष्णस्य सखे, हे हमारे प्रियतम के सखा, प्रेयसा श्री कृष्णेन पुनः प्रेषितः किम आगतः, क्या हमारे प्रियतम ने पुनः तुम्हें भेजा है मथुरा से, और उनके भेजने से फिर तुम आए हो। किम शब्द का अर्थ है, क्या उनके पास पहुंच गए थे, उन्होंने भेजा तब आए कि पथ से ही लौट आए, रास्ते से आ गए। प्रेषितः किम, प्रेयसा प्रेषितस्त्वं किम पुनरागतोसि, मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि मद अपराध अनगणित्वा मत प्रेयांस्त्वं पुनः प्रेषितवान। हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रियतम, मेरे अपराधों को कुछ नहीं गिने, तुमने सुनाया होगा मैं जो कुछ भी बोली हूँ मधुप किताब बंधों से लेकर के अब तक, तो तुम जाकर उनसे कहे कि राधा ने ऐसा ऐसा कहा है, तो लगता है कि हमारे प्रियतम अपने अपमान के बावजूद भी हमारे प्रेम का आदर किए हैं, इसीलिए तो तुमको भेजे हैं, हमारे वचन बाणों से घायल नहीं हुए। वास्तव में हमारे प्रियतम हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो तुम्हें प्रियतम का संदेश लाए हो ऐसा लगता है। किम शब्द का अर्थ है कि कहीं रास्ते से ही तो नहीं लौट गए। प्रेयसा मई अति प्रेमवता मद अपराध कोटि अपि अगण्यता तेनैव किम प्रेषितः, क्या उन्हीं के द्वारा भेजे गए हो या पथ से लौट आए हम। दो भाव कर रहे हैं, तुम प्रियतम के सखा हो तो हमारे मुख से जो तुम सुने हो कृष्ण के प्रति उलाहना कठोर वाक्य, तो अपने सखा से तो जरूर कहा होगा, लेकिन वे तुम्हारे सखा हैं तो हमारे प्रेयान हैं, हमारे प्रिय हैं। देखो तुमने इतनी शिकायत की जा करके मेरी, लेकिन फिर भी प्रियतम तुमको पुनः हमारे पास भेजे, हमसे कितना प्रेम करते। अथवा कृष्ण मेरे प्रिय हैं और तुम प्रिय के सखा हो, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, तो मेरे संदेशों को तुमने कृष्ण से कहा, लेकिन कृष्ण को मैंने जो कठोर वचन कहा था वो नहीं कहा। तुम बहुत विवेकी हो, इसी से भेजे, नहीं तो नहीं भेजे होते। दूत बहुत बुद्धिमान है, मैं जो बोली बहुत क्रोध में मान कर गई तो इन सब बातों को इसने नहीं कहा है। राधा रानी ऐसा सोचती है, वो भ्रमर में कहीं गया है न कुछ कहा है, लेकिन जैसे बांसुरी को देख करके सौतिया डाह होती है, वो जड़ बांस का एक टुकड़ा है लेकिन उसको कहती है कि हमारी सौत है, और ये है। तो प्रेम की उच्चतम दशा में एक जड़ पदार्थ के साथ भी ईर्ष्या होती है, ये भाग्यवती है, मैं अभाग्नी हूँ, जिस अधर सुधा को हमें पीना चाहिए ये बांसुरी पी रही है, बेणु पी रहा है। तो ठीक वही बात भ्रमर के साथ है, भ्रमर कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं आया है, वहीं चरण के गंध पर लुब्ध होकर के आ रहा था, तो इसको राधा रानी मान रही हैं कि हमारे चरण कमल पर गिर करके हमें मना रहा है, ये हमारे प्रियतम का दूत है। मूर्छित होने के बाद फिर जगी हैं तो इस तरह से पूछ रही हैं कि क्या प्रेयसा प्रेषितः, हमारे प्रियतम के द्वारा भेजे गए हो। और सत्य बोलो भ्रमर, क्या वे किसी स्त्री के साथ नहीं हैं, किम एकाकी वो वर्तते, अकेले हैं। यदि वे अकेले होंगे तब मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन हमारी कोई भी सौत होगी तो मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। इस तरह से एक कीट से एक भ्रमर से बात कर रही और संबोधन कर रही है सौम्य, हे सौम्य आर्ज बुद्धि असि इति भाव, तुम्हें बिल्कुल सरल बुद्धि के हो, निष्कपट, कभी तुमने पाप नहीं किया है, बहुत शांत स्वभाव के हो। अतः विश्वास है कि हमारे प्रियतम के सखा तुम असत्य कभी नहीं बोलोगे। पहले कही थी कि मुकुंद ने तुमको खूब झूठ बोलना सिखाया है, चाटुकारी करना सिखाया है, लेकिन अब भाव बिल्कुल बदल गया है। पहले कितव बंधो कह रही हैं, अब सौम्य कह रही हैं। सौम्य का अर्थ है सोम के समान शीतल स्वभाव वाला, निष्कपट, सरल चित्त। तुरंत विपरीत भाव हो गया। हे सौम्य, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कितव बंधो कह दिया, कुछ भी कहा, तुम उसको भूल गए। तुमने हमारी शिकायत नहीं की, हमारी कठोर वाणी को कृष्ण तक नहीं पहुंचा, इसलिए कहती हूँ तुम साधु शिरोमणि। हे अंग, हे प्रिय के दूत, तुम में माननीय पूज्य असि भवसी, तुम मेरे पूज्य हो। अतः की मनोरुंध है, की मनोरुंध से, कामय से क्या कामना है? अनुरोधम अनुवृत्तिम करोसि, तुम क्या अनुरोध कर रहे हो, मतलब क्या कामना कर रहे हो? कमते कामम पुरयामी इति भाव, तुम्हारी कौन सी कामना मैं पूरी करूं? हमारे पूज्य, हमारे माननीय, वरय वृणीस्व, मांगो। तो भ्रमर कहता है, मानो ननु जुष्माकम मधुपुरी गमनम एव वृणोमि, मैं आपसे मधुपुरी प्रस्थान के लिए, गमन के लिए मांग रहा हूँ। तब कहते सौम्य, सोमवत प्रिय दर्शन इह ब्रजे स्थिता अस्मान दुस्तज द्वंद पार्श्वम कथम नयसि, जिनके पास सदा स्त्रियां रहती हैं उन कृष्ण के पास हमको कैसे ले जा सकते हो? क्या युक्ति है तुम्हारे पास? कथम, कया युक्तिया इत्यर्थ। रहती है साथ में हम लोगों के भय से रेखा के रूप में, लेकिन जब हम नहीं रहती हैं तो प्रकट रहती है। ये सब गुणगान है भगवान कृष्ण का। उनके वक्षस्थल पर श्री जी हमेशा रहती, नारायण वक्षस्थिति तबु पाद सेवाय मति, सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, लेकिन हमेशा उनके चरण दबाती रहती हैं, भोजन बनाती हैं, घर साफ करती हैं, कपड़ा साफ करती हैं, भगवान की दासी के रूप में सेवा करती रहती। श्री का अर्थ सौंदर्य लक्ष्मी भी होगा, सुंदरता एक स्त्री है तो उससे डह कर रही है, ये भी अर्थ। वो श्री कृष्ण के छाती पर चढ़ी रहती है, मतलब पूरे देह पर चढ़ी रहती है। वधु, वधु कहकर और ईर्ष्या व्यक्त कर रही है, वधु बन गई है, लगता है कि जैसे उसी के साथ विवाह हो गया है। विवाह हुआ नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, कृष्ण के साथ तो चाहती हैं विवाह, लेकिन ऐसा ऐसे रह रही है कि लगता है जैसे वधु बन गई। सततम, निरंतरम, यह भी नहीं कि कभी कभी हट जाए छाती पर से, निरंतरम उरसी आस्ते है ही सहाय व्यास्ते। तुम कैसे कह रहे हो कि कृष्ण के साथ कोई स्त्री नहीं है? वो तो है, आस्ते तिष्ठते इत्यर्थ। तथापि तत्रापि उरसी एव वक्षसी एव, अरे कहीं घर में रहे, दूसरे घर में रहे तो छाती पर ही रहती, तो मैं कैसे जाऊं? सौम्य, यह सौम्य के कई अर्थ, सौम्य का अर्थ शांत प्रकृति, अतस्तेन सह तव सख्यम अनुचितम इति भाव। तुम सौम्य हो और वे कपटी हैं, इसलिए तुमको उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा विपरीत नहीं बोल रही हैं, लेकिन सौम्य इनको कह रहे हैं और उनको सौम्य नहीं कह रहे, प्रिय कह रही। तो जो सौम्य है, सुंदर प्रकृति का, सरल चित्त का है, उसको किसी कपटी के साथ सख्य नहीं करना चाहिए। तो तुमको मैं ये कह रहे हूँ, ठीक है तुम उनके दूत बनकर आए हो, लेकिन तुमको उनके साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। त्यज द्वंद पार्श्व सदा पुरस्त्री भी सह तस्य प्रसंगात, और दुष्ट द्वंद कह रहे हैं तत्र अस्माकम गमनम व्यर्थम इति भाव, यह ईर्ष्या है। लक्ष्मी रेखा में व तन मूर्ति तयोत्प्रेक्षोक्तम, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी रेखा को ही वो साक्षात मूर्ति के रूप में मान करके कह रही हैं, जैसे गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्मे वेणु, जैसे बांसुरी के विषय में कहते हैं ये वेणु कौन सा तप किया था, पता लगाओ, वही तप हम लोग भी करेंगे, उसने क्या तप किया था। बांस जाति तप क्या करेगा, लेकिन उसमें पुरुष की भावना स्त्री की भावना करके गोपियों ने से कहा। उसी प्रकार से छाती पर जो श्री रेखा है उसी के विषय में स्त्री मान करके राधा रानी दिव्य उन्माद में इस प्रकार का वाक्य प्रयोग कर रही है। और अयम भाव वो भी छाती पर रहती है, तो मतलब वो भी अपात्रा है, निर्लज्जा है लक्ष्मी। कौन कहता है कि चरण की सेवा करती रहती है, वो तो हमेशा छाती पर ही रहती है। जो रेखा छाती पर पड़ी हुई है तो हमेशा है। और इस प्रकार का भाव है, श्री कृष्ण का सांवला शरीर है और सांवले शरीर पर एक रोमावली है, पीली रेखा, रेखा जैसे रखते हैं पीत रेखा, वही लक्ष्मी जी का निवास स्थान। तो कहते वो तो हमेशा रहती है, चाहे श्री कृष्ण के सामने ऋषि मुनि आवे, चाहे देवता, चाहे भगवान शंकर आवे, ब्रह्मा जी आवे, लेकिन उसको कोई लज्जा नहीं, वो छाती पर ही रहती। ऐसी ढीठ बधु हो गई है, हमेशा छाती पर रहती है। भगवान के सामने कोई भी आवे वो तो रेखा वैसे ही रहती ही है, और जो भी देखते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं। और वहाँ लक्ष्मी जी क्यों रहती हैं, लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रह करके अपने भक्तों पर कृपा कटाक्ष करती हैं, देखती हैं, तो वे हमेशा सुखी रहते हैं, भगवान की भक्ति बनी रहती है, और लोक में भी उन्हें धन आदि का अभाव नहीं होता है। जो नारायण का दर्शन करते हैं वो कभी दरिद्र हो नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी देखती है, निहारती हैं उनको।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
एक रुमावली के प्रति, एक रेखा के प्रति जब इतना भाव हो रहा है कि ये सौत है, श्री कृष्ण की पत्नी बन गई है या ऐसे, और बहुत ढीठ हो गई है, कोई ऋषि मुनि आवे, देवता आवे, फिर भी नहीं हटती है। असल शिव जी के जांघों पर बैठने वाली पार्वती जी तो कभी कभी ऋषियों को देख करके हट जाती है, लज्जा की बात आती है। नौम स्कंध में कथा आई है, लेकिन ये लक्ष्मी इतनी ढीठ है, तो मैं तो जाऊंगी तब भी तो छाती पर ही रहेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। श्रीमन नंद ब्रज स्वभाव्येन तस्य तदा प्रेम मात्रत्वात् प्रेम मात्रादरात् न तादृशस्तदारु तदाद्रोव्यतः तत्र तु संपत्ति मात्र पुरुषार्थत्वात् महान एव तदादर इत्यतो वयं कथं तत्र जास्यामः इति तस्मादत्रैव तम आनय इति गूढ़ोभिप्राय। हाँ, वहाँ नहीं जा सकते, ये प्रेम का क्षेत्र है वृंदावन, मधु अगर तुम मिलाना चाहते हो तो कृष्ण को यहीं लाओ वृंदावन में, हम नहीं जाएंगे। तस्मात् अत्रैव तम आनय, यहीं पर कृष्ण को लाओ, इति गूढ़ो अभिप्राय, गूढ़ अभिप्राय यह है। एवं ईर्ष्या असूया स्पृहा च सूचिता। श्री वधु साकम सहैव तत्रापि सततम, एक तो श्री कृष्ण अपनी वधु श्री के साथ हैं और वो भी सततम निरंतरम। श्रीयो देवित्वेन नाना रूप धारित्वा धारित सत्य, श्री जी देवी हैं, इसलिए राधारानी कल्पना करते वो मानुषी होती तो चलो कभी रहती कभी नहीं रहती, लेकिन देवी है इसलिए नाना रूप धारण करने की शक्ति है उसको। तो कृष्ण जब अन्य स्त्रियों के साथ रहते हैं तो स्वर्ण रेखा के रूप में हो जाती है, और जब कोई स्त्री नहीं रहती है तो प्रकट हो जाती है। वो कभी बेचारी प्रकट नहीं होती है, लेकिन भावना हो रही है कि वो प्रकट हो जाती होगी। हो जाती है आस्ते। अत्र दूतम समान्यापि तदुक्तिम अंगी कृत्वा अपि अनौचित्यम ज्ञापयन्ति। दूत का सम्मान कर रही हैं और उसके उक्ति को अंगीकार कर रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कृष्ण से मिलना अनुचित है, इसको प्रतिजल्प कहते हैं। दूत की बात स्वीकार करके भी नहीं स्वीकार कर रहे। प्रेयसा प्रेषितः न तु कितवेन प्रेषितः। अगर कहते हैं कि उस कपटी ने भेजा है तो इसमें दूसरा भाव होता है, प्रेयसा प्रेषित, प्रियतम के द्वारा तुम भेजे गए हो, तो उसका भाव यह है प्रेयसा प्रेषित त्वम किम पुनरागतोसि मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि। हमारे प्रियतम हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, हमारे कठोर वचनों को नहीं देखते हैं, उनके प्रति हमारा कितना प्रेम है इसी पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। अब तक विपरीत बोल रहे थे, मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि, हमारा जो प्रेम है उनके प्रति बहुत अधिक, उसी पर उनकी दृष्टि रहती है। तो मद अपराध अनगणित्वा, हमारे अपराधों को नहीं किए, ध्यान नहीं दिए, मत प्रेयं त्वं पुनः प्रेषितवान, हमारे प्रियतम तुमको पुनः भेजे हैं। किम किं वा मया तिरस्कृतत्वादितो गतः, हमारे तिरस्कार कर देने से तुम गया था ना, निश्चित है मैं बहुत बोल दी थी, कड़ी वाणी में तुमसे मैंने कुछ कहा था इसलिए चले गए, लेकिन स्व सौजन्य न, तुम अपने सौजन्य से सज्जनता से मद अपराधम उपेक्ष, मेरे अपराधों की उपेक्षा कर दिया और संदेशान गृहित्वा गंतव्यमिति विचार जा, तुमने सोचा कि ठीक है बेचारी विरह में है तो कुछ बोल रही है, ये सब बात कृष्ण को नहीं बताना चाहिए, तुमने ये सोचा, कोई बेचारी विरहिणी होती है तो विरह में अपने प्रियतम को कुछ बोल देती है, तो हमको ये चीज़ नहीं बताना चाहिए कृष्ण से, तुमने ये सोचा, केवल संदेश जो दे रही है कि दर्शन के बिना मर रहे हो ये कर रहे हो, तो संदेश लेकर के गए, दोष नहीं बताए, इसलिए तुम साधु हो। अथवा ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बुरा बुरा वचन कहा, कृष्ण को कपटी कहा, धूर्त कहा, यह कहा वह कहा, तो तुमने विचार किया, पहले तो तुमने सोचा कि जाकर कृष्ण से कहूँ, लेकिन रास्ते में जाते जाते तुम्हारा शायद भाव बदला होगा, मार्ग मध्यत प्रावृत्य स्वयं वह आगतो असी इति किम शब्दा। प्रीतम ने भेजा है कि पथ से ही लौट आए हो, हमें तो आशा है कि प्रीतम ने भेजा है क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अथवा हो सकता है तुम पथ से ही लौट आए हो, उभयथापि मानरहत्व मिथ्या, किसी जो भी स्थिति हो, चाहे तुम बीच रास्ते से लौटे हो अथवा प्रियतम के भेजने से आए हो, दोनों हालत में तुम मेरे माननीय हो, आदर के पात्र तुम हो, आदर के पात्र मेरे प्रिय प्रियतम के सखा, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया, तुम मुझे बारंबार प्रणाम कर रहे थे, मना रहे थे, लेकिन तुमने मुझको, तुम्हारी मैंने पूजा नहीं की, तुम मेरे माननीय हो लेकिन तुम्हारा तिरस्कार किया, इतः पूजा अप्राप्य प्रत्युत तिरस्कारम अवाप्यापि तत्र गतम, मैंने पूजा नहीं किया उल्टे तिरस्कार किया, दूत का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है, यह है कि दूत का अपमान भी नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो दूत इतना अनुकूल भाव से संवाद लेकर के राधा रानी के पास गोपियों के पास आया है और उसको इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई जाए, तो इस पर राधा रानी कह रही कि तुम्हारी पूजा होनी चाहिए थी हमारे प्रियतम के दूत, लेकिन मैंने बहुत तिरस्कार किया, तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं, तुम प्रणाम कर रहे थे तो मैं डांटी, बहुत कठोर वचन बोली, तो न मत दत्तोपालंभान उक्तवान किंतु मम प्रेमाति रेकम एव, तो तुमने मेरा उपालंब नहीं कहा मेरे प्रियतम से, केवल मेरे प्रेम के उद्गारों को तुमने कहा, इसलिए सज्जन शिरोमणि चत्व, तुम सज्जन शिरोमणि, तो आगमने न मया अवगतम तुम पुनः आ गए, इसी से मैं जान गई कि तुम सज्जन शिरोमणि हो और तुम कुछ नहीं कहे हो कृष्ण से, केवल हमारे प्रेम को कहे हो। अतः अब मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहती हूँ, जो उस समय नहीं कर पाई अब करूँगी, मांगो क्या चाहते हो। तो भ्रमर कहता है, यदि ईप्सितम वरम दातुम प्रवृत्ता आसी, यदि हमारी इच्छा के अनुसार वर देना सचमुच चाहते हैं, चेतरी प्रयसा सार्धम त्वत समागमन एवं अहम प्रार्थना, तो मेरी यही इच्छा है कि आप अपने प्रियतम कृष्ण के साथ हो जाइए और उनके साथ रहिए, मतलब चलिए मथुरा। तो इसी पर कहती है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ कैसे जाऊँगी, वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ होंगी, लक्ष्मी हैं, तो इसमें राधा रानी सुख में है, केवल ईर्ष्या है लक्ष्मी जी से, ऐसे श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल अनुकूल भाव हो गया। तो इस अनुकूल भाव को सूरदास जी ने एक पद में गाया है,
उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी, जैसे सुमन गंध लय आवत, वैसे सुमन गंध लय आवत, पवन मधुपय अनुरागी, पवन मधुपय अनुरागी।
जैसे पवन किसी पुष्प के गंध को लेकर आता है, पुष्प तो नहीं लेकर आता लेकिन पुष्प के गंध को लेकर आता है, वैसे ही आप प्रियतम को नहीं लाए हो लेकिन प्रियतम के संदेश को लाए हो, हम धन्य हो गए। अपने प्रियतम का संवाद पाकर कम से कम उन्होंने हमें याद किया है, हमारा स्मरण किया है, इसी से हम बहुत भाग्यवती हो गई। और वह गंध जिस पर मधुप अनुराग करता है, मधुप अनुरागी,
अति आनंद बढ़ो अंग अंग में, अति आनंद बढ़ो, अति आनंद बढ़ो अंग अंग में,
अति आनंद
पर न यह सुख त्यागी, सरे सब दुख देखत तुमको, विसरे सब दुख, विसरे सब दुख देखत तुमको, विसरे श्याम सुंदर हम लागी, श्याम सुंदर हम लागी,
करते ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर के साथ हम लग गई हैं, संजोग हो गया है इस पत्र से, तुम्हारे संवाद से।
बिसरे सब दुख देखत तुमको, बिसरे सब दुख, श्याम सुंदर हम लागी, श्याम सुंदर हम लागी, उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी।
लेकिन फिर भी जब तक प्रियतम नहीं मिलते हैं तब तक वही दशा है कि दर्पण में कोई चित्र आंख तो देखती है लेकिन हाथ उसे छू नहीं सकता।
ज्यो दर्पण मधि द्रिकन द्रिगनिरखत जहाँ, ज्यो दर्पण मधि द्रिकन, ज्यो दर्पण मधि द्रिगनिरखत जहाँ, हाथ तहाँ नहीं जाई उधो हम, हाथ तहाँ नहीं जाई उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज। ज्यों दर्पण मधि दृग निरखत जहां हाथ तहां नहीं जाई त्यों ही सूर हम मिली सामरे त्यों ही सूर हम मिली सामरे बिरह बिथा बिसराई
एक प्रकार से हम श्री कृष्ण से मिल गए लेकिन वैसे ही जैसे दर्पण के चित्र को कोई देखता है लेकिन भेंट नहीं हो सकती।
नयनन नंद नंदन ध्यान नयनन नंद नंदन ध्यान कहाले उपदेश दीजे जहां निर्गुण ज्ञान नयनन नंद नंदन ध्यान। हमारे नेत्रों में तो केवल नंद नंदन का ध्यान बसा हुआ है। उद्धव जी आप अपने निर्गुण उपदेश अपना उपदेश वहां दीजिए जहां निर्गुण ज्ञान के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा हो। जाइए काशी जी में चाहे हरिद्वार में वहां बेच आइए। तहाले उपदेश दीजे तहाले उपदेश दीजे जहां निर्गुण ज्ञान नयनन नंद नंदन ध्यान। पानी पल्लव रेख गन गुण अवधि विधि बंधान इते पर कही कटुक वचनन हनत जैसे प्राण नयनन नंद नंदन ध्यान।
मैननी नंद नंदन ध्यान क्या ध्यान हम करते हैं क्या देखते हैं दिन रात।
चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान कोटि मन मथवारी छवि पर निरख दीजत प्राण नयनन नंदनम नन ध्यान नयनन नंदनंदन ध्यान।
चंद्र कोटि प्रकाश मुख
चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान
उनके कुंडल कोटि कोटि भानु के समान।
चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान कोटि मन मथवारी छवि पर निरख दीजत दान
और उनके छवि पर कोटि कोटि कामदेव को नक्षावर करके दे दूंगी और उनके छवि पर कोटि कोटि कामदेव को नक्षावर करके दे दूंगी कोटि कोटि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सब
भ्रिकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान
करोड़ों करोड़ों धनुष के समान उनकी भ्रिकुटि है रुचि अवलोकनी संधान और उनका जो देखना है किसी को वही है बाण का संधान करना। संधान का अर्थ है बाण को धनुष के प्रत्यंचा के पास पकड़कर और धनुष के डंडे पर रखकर लक्ष्य को वेदने का जो उपक्रम होता है इसको संधान कहते हैं। तो कृष्ण का किसी पर देखना यही है बाण का संधान। भ्रिकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बाण कोटि बारिज बंक नयन उनकी जो उनका जो नेत्र है वो कोटि कोटि कमल के समान है परंतु उससे जो कटाक्ष है करोड़ों करोड़ों बाण जैसे कमल नयन के नेत्र से इतने घातक बाण कैसे निकल जाएंगे बताइए।
आंख कमल के समान है, कोटि कोटि आंख कमल के समान सुकुमार, बहुत सुंदर आंख है, लेकिन उसकी जो चितवन है कटाक्ष वो कोटिक बाण है जैसे। भ्रिकुटि कोटि को दंड रुचि अवलोकनी संधान, कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बाण नयन नंद नंदन ध्यान नयन कंबुग्रीवा रतन हार उदार उरमनी जान। और हमारे प्रियतम के कंठ शंख के का कंठ शंख के समान है और उसमें रत्न हार लगाए हैं। उदार उर उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा है, उदार उर मणि जान और उस पर मणिया है। आजान बाह उदार रहते, उनकी भुजाएं घुटने तक लटकी हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं, आजान बाह उदार अति और बहुत उदार भुजाएं हैं, उनसे दुखियों का दूर कर देते हैं, दुखियों का दुख दूर कर देते हैं, हमें अपनाते हैं सहलाते हैं। उदार अति करपद्म सुधा लीला, उनका जो करपद्म है हाथ का तलवा वो तो अमृत का निधान। श्याम तन पटपीत की छवि करे कौन बखान, मन हुनीर तत नील घन में पड़ित अति दुतिमान नयनन नंद नंदन ध्यान नयनन। उनके सांवले शरीर पर जब पीतांबर फहराता है तो कौन वर्णन कर सकता है, फिर भी मैं थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ। सूरदास जी का कॉपी मानो ऐसा लगता है कि श्याम घन में बिजली नाच रही है। कृष्ण के नाचने से अथवा ऐसे भी हवा के वेग से पीतांबर फहरा रहा है तो कृष्ण सांवले मेघ के समान है और उनमें लिपटा हुआ पीतांबर बिजली के समान, वो भी नाचती हुई बिजली। मन हुनीर तत नील घन में तड़ित अति दुतिमान नयनन नंद नंदन ध्यान। रास रसिक गोपाल मिल मधु अधर करती पान, सूर ऐसे रूप बिनु को कहा रक्षक आन नयनन नंद नंदन ध्यान नयनन नंद नंदन ध्यान। ये है कृष्ण का ध्यान। फिर कहते हम आंखों को कैसे समझाएं उद्धव, क्या करें, कैसे इनको रखें, मतलब कैसे सांत्वना दें। उद्धव क्यों रखा ये नैन, उद्धव क्यों रखा ये नैन, क्यों का अर्थ कैसे, कैसे हम अपनी आंखों को समझाएं, कैसे इनको रख। सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुनत तिहारो बैन सुनत तिहारो बैन, उधो क्यों रखो ये मैं, उधो क्यों रखो ये सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुनत तिहार बैन उधो क्यों रखो ये नैन। अंत हमारी दोनों आंखें क्या है जो मन हर बदन चंद्र के, है जो मन हर बदन चंद्र के, सादर कुमुद चकोर सादर कुमुद चकोर। कृष्ण के बदन चंद्र के लिए हमारे दोनों नेत्र कुमुद और चकोर है, और चकोर जैसे चंद्रमा से प्रेम करते हैं वैसे हमारी आंखें कृष्ण के बदन चंद्र से प्रेम करते हैं। मैं जो मन हर बदन चंद के सादर कुमुद चकोर परम त्रिशारत सजल श्याम घन के जो चातक मोर। और श्याम घन घन श्याम के लिए हमारे नेत्र दोनों चातक और मोर हैं। बादल को देखकर चातक और मोर दोनों बहुत हर्षित होते हैं। तो बदन चंद्र के कुमुद और चकोर और श्याम घन के चातक और मोर परम त्रिशारत परम प्यास से भरे हुए मधु पमराल चरण पंकज के मधु पमराल चरण पंकज के गति विलास जलनी चक्रवाक मन दुती दिन करके चक्रवाक मन दुती दिन करके मृग मुरली आधीन उधो क्यों राखो ये नै। ये हमारे नेत्र क्या है मधुप मराल चरण पंकज के कृष्ण के चरण पंकज चरण कमल के भावरा और हंस है। भावरा और हंस कमल से बहुत प्यार करते हैं। मधुप मन भावरा और मराल मतलब हंस मधुप मराल चरण पंकज के गति विलास जलमीन। अगर चरण चलता है दोनों चरण भगवान के जब चलते हैं नाचते हैं तो उनकी जो चाल का विलास है सौंदर्य है वो जल है और हमारे नेत्र मीन है। उनकी चाल देखे बिना हम जी नहीं सकते जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती। गति विलास जल मीन और चक्रवाक मति दुती दिन करके। यदि कृष्ण सूर्य है तो हमारे दोनों नेत्र चक्रवाक और सूर्यकांत मणि मणि दुति। चक्रवाक पक्षी चक्रवाक सूर्य के उगने पर एक साथ रहते हैं खुश रहते हैं। चंद्रमा के उगते ही दूर हो जाते हैं। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भगवान बोल रहे हैं रामचरितमानस। तो चक्रवाक और मणि दुति एक सूर्यकांत मणि होते हैं। सूर्य के उगने पर पिघलने लगती है सूर्य का ताप लगने पर किरण पड़ने पर पत्थर पिघलने लगता है स्नेह टपकने लगता है उसमें से। तो श्री कृष्ण यदि सूर्य जैसे हैं तो हमारे दोनों ने तो चक्रवाक और सूर्यकांत मणि जैसे। और श्री कृष्ण के मुरली नाद के अधीन हमारा हमारे नेत्र मृग बन जाते हैं उस समय मृग मुरली अधीन। हमारे कर्ण मुरली ध्वनि से प्रेम करने वाले ऐसे ही है जैसे मृग शब्द से प्रेम करते हैं मृग मुरली अधीन। सकल लोक सुनो लागत है सकल लोक सुनो लागत है बिन देखे वारू बिन देखे वारू सूरदास प्रभु नंद नंदन के सूरदास प्रभु नंद नंदन के नख सिख अंग अनु नख सिख अंग अनु उभो क्यों राखो ये नैन उभो क्यों राखो ये नैन।
कृष्ण के अंग के शरीर के ये तृप्त नहीं हो सकते हैं उनके बिना संपूर्ण संसार शून्य लग रहा है। घर में सब भरे पड़े हैं स्वजन है धन है गौवे हैं सब कुछ है लेकिन कृष्ण के बिना सब शून्य लग रहा है।
सकल लोक सुनो लागत है बिन देखे वारू सूरदास प्रभु नंदन नंदन के नख सिख अंग अनु उधो क्यों राखो ये नन। ऐसे रूप के बिना हम अपने नेत्रों को कैसे समझाएं, तुम ही बताओ।
मधुपुर जामार्ज पुत्र धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुंश्च गोपान। क्वचिदपि सह कथा न किंकरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम ऊर्धन्य धास्यत कदानु।
एवं निज प्राणनाथे सर्व सद्गुणमय बिरहार्तिभर जनित क्रोधाद्रेकेण कठिन तरोक्त्या अहो किम किम मया प्रलपितम प्रष्टव्यम तु न पृष्टमिति पर्योषाने सार्जवम स गांभीर्जम स दैन्यम स चापलम सत्कंठम स गदगद वाशुधारम उच्च ही रुदति प्रेक्षति। के साथ गदगद वाणी से बोल रही है, दीनता के साथ, गंभीरता के साथ, सरलता के साथ, और ये सोचते हैं कि हाय हाय हमारे प्राणनाथ तो समस्त सद्गुणों के निवास स्थान है, लेकिन विरह से इतना दुख हो रहा था कि उस दुख के कारण मैं क्रोध से उनकी बहुत बुराई की, उनकी निंदा की, बहुत कठोर बोली, पता नहीं क्या क्या मैंने प्रलाप किया, जो पूछना चाहिए था वो मैं नहीं पूछ पाई। हमारे प्रियतम का दूत आया है और मैं दूत का न सम्मान की, न प्रियतम के विषय में कुछ पूछी, बल्कि केवल निंदा की। तो ये कहकर जोर जोर से रोने लगी और इसके बाद पूछती, सौम्य हे सौम, हे सरल स्वभाव वाले मधुर बता, हे दूत, आर्ज पुत्र श्री गोपेन्द्रस्य नंदस्य पुत्र अधुना मधुपुरजम आस्ते, हमारे प्रियतम पति आर्जपुत्र नंद महाराज के पुत्र इस समय मधुपुरी में है ना। मधुपुरी में है यह शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मधुपुरी में होंगे तब तो मिलने की आशा भी रहती है और सुख से रहेंगे, इधर उधर में जाएंगे तो दुख में रहेंगे, तो सुख से है ना मधुपुरी में। अपि किम, किम के लिए अपि शब्द का प्रयोग किया है, और वत का अर्थ है हर्ष अथवा संबोधन। हे दूत, हमारे आर्ज पुत्र इस समय मधुपुरी में है ना। इस वाक्य से ऐसा लगता है कि राधा रानी को यह शंका है कि वे मथुरा भी छोड़ करके कहीं गए होंगे, क्योंकि सब लोग उनको बुलाते हैं या वो जा सकते हैं, जैसे यहाँ से मथुरा गए हैं तो वहां से भी जा सकते हैं। अपिति प्रश्न अस्य वाक त्रयणैव अन्वयः, तीनों वाक्य में ये अपि शब्द लगेगा, मधुपुरी में अधुना आस्ते और अपि स पितृगेहन स्मरति बंधु गोपांश्च, बंधुओं को, गोपों को, गौओं को, माता पिता को, घर को, सबको याद करते हैं क्या, और क्या कभी हम किंकरियों के मस्तक पर अपना अगुरु सुगंध भुजा रखेंगे। ये तीनों वाक्य में अपि लगेगा। जदवा सुखम इत्यर्थ, सुख से है ना, पूर्व मधुपुरी में है ना। आर्जस्य श्री गोपेन्द्र से पुत्र अस्मत स्वामी इति, यहाँ श्री राधा रानी भगवान को बिल्कुल अपना पति मान करके बोल रहे हैं, स्वकीय भाव में, वो तो है ही, नित्य प्रेसी हैं भगवान के। आर्ज पुत्र स्त्रियां कहती हैं अपने पति को, तो आर्ज है नंद महाराज और उनके पुत्र, आर्ज पुत्र सुख से है ना। सह आर्ज पुत्र पित्री गेहान किम स्मरति, पितुः श्री ब्रजेन्द्रस्य गेहान जद्वा पितृभ्यां गृहश्च सहितान, अपने माता पिता की वे याद करते हैं क्या, वे अपने घर कभी आएंगे, कभी चर्चा करते हैं। बंधुन ज्ञातिन उपनंदा दिन, और अपने परिवार के जो अन्य बड़े बूढ़े हैं उन बंधुओं की क्या कभी वे याद करते हैं, और गोपाल और अपने सखाओं को, गोपों को, श्रीदाम आदि को या अन्य बंधु गोपों को स्मरति अपि, क्या स्मरण करते हैं। सह कृष्ण श्रीदामादि सख अस्मत् प्राणनाथ, यहाँ सह का अर्थ है श्रीदाम आदि के सखा हमारे प्राणनाथ, क्वचिदपि कदाचिदपि कस्मिंश्चित प्रसंगे स्थाने अवसरे वा, क्या कोई ऐसा अवसर उनको मथुरा में मिलता है जब उन्हें ब्रज की याद आती है या हमारी याद आती है, हम दासियों की कोई स्थान या कोई ऐसा प्रसंग बातचीत का अवसर हो या देश समय स्थाने अवसरे वा प्रसंगे वा, किसी प्रसंग में किसी स्थान पर किसी अवसर पर किंकरिण्याम न कथा गणिते, क्या हम किंकरियों के विषय में, हम उनकी दासियां हैं, हम दासियों के विषय में कभी पूछते हैं कि वे कैसी हैं क्या हैं। अपि ननु भो, ननु का अर्थ है हे, हे प्रियतम के दूत, कदा अगुरु सुगंधम भुजम अस्माकम अधास्यत, यदि भंवरा ये कहे, गुनगुना ही रहा ये कहेंगे आप क्या कह रही हैं, वो तो दिन रात केवल ब्रज का ही स्मरण करते हैं, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। तब कहती हैं तो क्या कभी वो ब्रज में आएंगे, और आ करके क्या हमारे मस्तक पर भी कभी रखेंगे। इसका अर्थ है कि ध्यान विशेष से राधा रानी का ध्यान जा रहा है भगवान की बाहों पर, और सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण के किसी अंग का संजोग होता है राधा रानी से तो बाह का है, बाह उनके मस्त कंधे पर रहता है, गलबाही दिए रहते हैं कृष्ण, तो वही बाह याद आ रही है, और ऐसे बाह आती है और उसको सूंघी है कई बार। तो इस समय भी बात करते समय श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं ध्यान विशेषण साक्षात सौरभ्यम अनुभवंती व भाव विशेषम द्योते, अभी भी सूंघ रही हैं भाव द्वारा ध्यान द्वारा, और कहते हैं क्या अपने अगुरु के समान सुगंधित, उपलक्षण से कमल के समान सुगंधित, या उन किसी भी सुगंधित वस्तु के समान सुगंधित भुजन, अपनी भुजा को, वही एक भुजा याद आ रही है बाई भुजा, और मूर्धनी मस्तक पर धारण करने के तो दैन्य के कारण कह रही हैं, लेकिन सामान्यतः बाई भुजा भगवान कृष्ण धारण करते हैं उन पर। तो भुजम अस्माकम मूर्धनी अधास्यत, कि हमारे मस्तके निधास्यति स्पर्श विशेषापेक्षा, क्या हमारे मस्तक पर कभी रखेंगे। कितने दीन भाव से बोल रहे हैं, कोई पत्नी ये नहीं कहेगी पति को कि हमारे मस्तक पर हाथ रखो, लेकिन इतना दैन उत्पन्न हुआ है कि अपने को किंकरी कह रहे हैं, हम दासी हैं, हमारे स्वामी हैं, क्या हमारे मस्तक पर हाथ रखेंगे। स्पर्श विशेषापेक्षा स्पर्श की प्रार्थना कर रहे हैं, जद्वा मन मात्रेणापि कृतार्थ मननात्, अथवा तन मात्रेणापि कृतार्थ मननात्, अथवा इतना दैन है कि वो सोच रहे हैं कि शायद अब वे मुझे गलवाही नहीं देंगे, अब मेरे साथ नहीं नाचेंगे, कम से कम हमारे सिर पर एक बार हाथ तो रख देंगे, क्या इसके लिए कभी आएंगे। तत्र च मूर्धनि सर्वांग सृष्टि धारणे न सर्वांगेषु एव धारण सिद्ध, अथवा ये अर्थ हो सकता है कि जब सिर पर रखने के लिए कह रहे हैं, जब सबसे उच्चतम अंग पर जब हाथों से स्पर्श किए, तो इसका मतलब उससे बाह वक्षस्थल आदि का स्पर्श अपने आप सिद्ध हो, कि वह परम दैन्येन तस्मिन् धारणस्यापि बहुमानात्, अथवा इतना दैन्य है कि श्री कृष्ण यदि अपनी भुजा को राधा रानी के सिर पर रखें तो इसको भी वे बहुत मान रही है, इस समय दैन्य के कारण बहुत दुर्लभ मान रही है। जदवा रासाभिप्रायण कंठे इति वक्तव्य लज्जादिना मूर्धनी इति, अथवा भौरा से बात कर रही हैं या उद्धव जी से, कहना चाहिए था कि क्या हमारे कंठ में कभी अपनी भुजा डालेंगे, हमारे साथ नाचेंगे, झूला झूलेंगे, लेकिन लज्जा के कारण मूर्धनी कह रही है, सिर पर हमारे सिर अपनी भुजा हमारे सिर पर रखेंगे, क्यों रखेंगे। मान लीजिए भावरा पूछे, वो तो गुनगुन कर ही रहा है,
धारण हेतु क्यों रखेंगे तो किंकरी नाम, हम उनकी किंकरी हैं। नू प्रश्न है या नू शब्द प्रश्न में क्या रखेंगे, नू का अर्थ क्या। पूर्वम अपीति पूर्वम अपीति उक्ते भी पुनः नू शब्दो अत्यंत आरती प्रश्नार्थ। जब एक बार अपी कही दिया क्या रखेंगे, अपी तीनों वाक्य में लगेगा तो नू क्यों लगा रही है, या नू शब्द जो है अत्यंत आरती प्रश्न के कारण। क्या वे ऐसा करेंगे, क्या वे स्मरण करते हैं, तो फिर करें क्या हमारे मस्तक पर अपना हाथ रखेंगे। जगवा किम नु इत्यादि वत कदाचित एकमेव पदम एवं प्रश्नानाम चतुर्णाम ऐसा जथोत्तरम लालसा धिक्केन श्रेष्ठम उज्जम। जगवा किम नु इत्यादिवत अथवा किम नु अपि नु दोनों को एक में जोड़ करके कहा जाएगा, और इस तरह से कदाचित इति एकमेव पदम। इस प्रकार से चार प्रश्नों में जथोत्तरम लालसा धिक्केन श्रेष्ठम उह्यम, चार प्रश्न राधा रानी ने किया है भ्रमर से अंतिम श्लोक में, तो उत्तर उत्तर श्लोक उत्तर उत्तर प्रश्न में लालसा अधिक व्यक्त हुआ है, अधिक अधिक लालसा व्यक्त हुई है। जैसे देखिए अपि बत मधुपुरजाम आर्ज पुत्रो धुनास्ते, आर्ज पुत्र नंद महाराज के पुत्र क्या मधुपुरी में है, यह इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुना है कि हमारे प्रियतम पढ़ने के लिए अवंतिका गए थे, तो क्या आ गए हैं, मधुपुरी में आ गए हैं, एक प्रश्न है। दूसरा है क्या वे अपने माता पिता अपने घर और अपने बंधु और अपने सखाओं गोपियों गोपों गायों की याद करते हैं, दूसरा प्रश्न है। तीसरा है क्या हम दासियों की कभी कथा वे कहते हैं बात करते हैं, और चौथा प्रश्न है क्या वे अपना या कब कोई ऐसा समय आएगा जब वे अपना हाथ हमारे सिर पर रखेंगे, चार प्रश्न है। तो चारों में पूर्व की अपेक्षा उत्तर बाद में लालसा का आधिक्य व्यक्त कर किया गया। सबसे बड़ी लालसा है कि वे अपने हाथ को हमारे मस्तक पर रखें। अन्य तर व्याख्या तुम जदवा बतक खेद अधुना अपनी आस्ते किम, अथवा खेद में बत शब्द का प्रयोग किया जाए, क्या अब तक मधुपुरी में ही हैं, उनको तो यहां रहना चाहिए, ब्रज में आना चाहिए। तावंतम बहुकालम तत्र स्थातुम नार्हति इति भावम, अधुना आस्ते अभी भी मथुरा में ही हैं, बहुत काल तक मथुरा में रह गए, उनको वहां नहीं रहना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। जत आर्ज पुत्र क्योंकि नंद बाबा के पुत्र है, सौम्याश्च ते बंधवश्च तान इति सुप्रकृतादिना स्मरण योग्यतो कृता, और सौम्याश्च और उनके जो बंधु हैं सौम्य सुंदर स्वभाव वाले हैं, सुंदर प्रकृति वाले हैं, अतः उनका स्मरण उन्हें करना चाहिए। मूर्धनी इति एकत्वम लालसा विशेषेण दैन्य भावे नैव, किंकरीणाम बहुवचन दिया गया है तो मूर्धसु देना चाहिए ना, हम किंकरियों के सिरों पर अपना हाथ कब रखेंगे, लेकिन एक वचन में बोल रही हैं मूर्धनी। सखियों के साथ बहुवचन बोल रही हैं और सिर एक कह रही हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं मूर्धनी इति एकत्वम लालसा विशेषेण, लालसा यही हो रही है, केवल अपने विषय में सोच रही है कब आकर हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। अथवा दैन्य भावे नवा, केवलम आत्मा अपेक्षा केवल अपने लिए, मैं इति साक्षात अनुक्ति, तो ये क्यों नहीं कह रही कि मेरे सिर पर रख दे, मैं का प्रयोग क्यों नहीं राधा रानी ने किया, कहना चाहिए ना कि मम शिरसी मम मूर्धनी या मैं मूर्धनी, ऐसा नहीं कहा। इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि मैं इति साक्षात अनुक्ति धार्ष्ट परिहारार्थ, धृष्टता के परिहार के लिए कह रही हैं, धृष्टता नहीं दिखाना चाहते हैं। वैदग्धि विशेषण वा प्रेम भर स्वभावेन वा, अथवा वैदग्धि विशेष कह रहे हैं प्रेम की अधिकता के कारण। सह सह का अर्थ टीकाकारिक सह मधुपुर निवासी सह वह कृष्ण कब आएंगे याद करते हैं यानी सह वो आएंगे। सह मधुपुर निवासी सह का ये अर्थ हुआ है ब्रज जनक जीवातु, जो ब्रज जनों के एकमात्र जीवन है ये अर्थ हुआ। दूसरा वा पितृ गेहान पितुः श्री गोपेन्द्रस्य गेहान गेहानी इति जन्म भूमित्वादिना स्मरण योग्यता उक्ता। क्या है अपने माता पिता की और अपने घर की याद करते हैं जहाँ वे जन्म लिए हैं, नंद भवन की याद करते हैं या महावन में जहाँ उनका जन्म हुआ क्या उसकी याद करते हैं? तो पितुः और गृह गृह कह करके राधा रानी यह समझा रहे हैं कि हे मधु जन्म भूमि आदि होने से उनके स्मरण के योग्य हैं, स्वाभाविक है इनकी स्मृति आना। बहुत्वम ब्रजस इतस्ततः गमने न पुत्र सुखार्थव स्थान स्थान विचित्र गृह निर्माण। बहुवचन का क्यों प्रयोग कर रही है? गेहान पितृ गेहान, क्या कृष्ण को बहुत घर है? गृहम कहना चाहिए। तब श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं गेहान बहुत्वम ब्रजस इतस्ततः गमने न, कि वे ब्रजवासी गौओं के साथ आज महावन में रहे, कल वृंदावन चले जाएंगे, कल काम बन जाएंगे, कल यहाँ जाएंगे, बहुत बहुत घर बनता था। तो और विशेष करके पुत्र सुखार्थम स्थाने स्थाने विचित्र गृह निर्माण, नंद बाबा अपने पुत्र के सुख के लिए पूरे 84 कोस में कई जगह घर बनाए थे जहाँ आनंद से रहे दोनों भाई रहे। इसलिए गेहान बहुवचन का प्रयोग है। जदवा नित्य निवास भूत स्थाने श्री नंदीश्वराख्ये एवं, अथवा कृष्ण का जो नित्य निवास अपना घर है जिसे नंदीश्वर कहते हैं नंदगांव, उसी में दिव्य महाप्रसाद बाहुल्यात, अथवा बहुत बड़े बड़े भवन वहीं होंगे। और श्री कृष्ण के तो सब घर अपने हैं, अथवा आगे अर्थ कर रहे हैं कि अन्य गोपों के जो घर हैं वो भी कृष्ण के ही घर हैं। वे गोप कभी भी उनको अपना घर नहीं मानते, वो ही मानते थे कृष्ण का सब घर है, और कृष्ण भी सब घर को अपना ही घर मानते थे नंद बाबा के घर जैसा। इसलिए गेहान शब्द का प्रयोग किया गया है। राधा रानी जानती हैं कि ब्रज में जो भी घर है सब कृष्ण का है, तो क्या अपने घरों की याद करते हैं? अथवा निकुंजाद्यपेक्षा, तो निकुंज भी तो उनका घर है, अनेक हजारों हजारों कुंज हैं, गिरिराज की गुफा है, सब कृष्ण का घर है, तो क्या इन घरों की कभी वो याद करते हैं? बहुवचन का प्रयोग हो गया इसलिए अर्थ किया जा रहा है। एवं पित्रो स्मरण प्रश्नो अपि आयाता एवं, पित्रो स्मरण प्रश्नो अपि आयाता एवं। जदवा पितरौ गृहस्थ निजान स्मरति, या अपने दोनों माता पिता नंद जसोदा और गृह की याद करते हैं अपने घर के? तेषां वत्तद् गृहत्वात् विशेषण प्रयोग, क्योंकि उनके पिता का ही वो घर है, इसीलिए किसका घर यह विशेषण नहीं लगाया गया है। अथवा ब्रज में जितना घर है सब कृष्ण का है, इसीलिए गेहन शब्द कहा गया। किसका घर, अगर दूसरे का घर याद करते हैं कि नहीं ये कहा जाता, लेकिन घर याद आता है कि नहीं तो इसका अर्थ है जिससे पूछा जा रहा है उसी का घर है। जैसे मान लीजिए यहाँ किसी से पूछा जाए घर जाएंगे, तो वहाँ घर जाएंगे इतना ही पूछा जाए तो समझ जाएगा मतलब उनके अपने घर के लिए पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप हमारे घर जाएंगे या और दूसरे के घर जाएंगे, केवल इतना ही कहा जाए कि अब घर जा रहे हैं तो उससे मतलब हो गया, मतलब हाँ अपने घर। तो गेहन शब्द है लेकिन किसका गेह ये यह नहीं कहे। अथवा पिता का गेह, पितृगृहन या पितृगृह गृहन का पिता के घरों को, लेकिन ये अर्थ किया जाए कि पिता को और घरों को, माता पिता को याद करते हैं और घरों को याद करते हैं क्या। तो माता पिता की याद अलग याद हुई, और अपना जो उनका घर है नंदीश्वर में या ब्रज चौरासी कोस में या कुंज गिरिराज जी की गुफा जो भी है, अथवा वो जगह जगह छोटा छोटा गृह बनाते थे खेल खेल में, वो सब याद आता है उनको अलग अलग। तो अपना ही घर है ये सिद्ध हुआ इस अर्थ से। तत्स्मरणे नापि तत्सम्बन्धे न निज स्मरण संभावना। तो अपने विषय में तो नहीं पूछ रहे कि क्या हमारा स्मरण करते हैं, लेकिन कथा गृणीते में तो स्मरण आ गया, परंतु श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका स्मरण पूछ रही है घर का माता पिता का, तो यही संभावना करके कि उनका स्मरण करेंगे तो हमारा तो करेंगे, तो उनके संबंध से हमारी भी याद करेंगे कि राधिका नाम की गोपी है और ये दासी है मेरी और सब। सबसे प्रथम स्मरण का विषय ब्रज में राधा रानी है कृष्ण का, लेकिन देखिए दैन्य प्रेम का, कभी क्या वे अपने माता पिता की याद करते हैं, सखाओं की गायों की गोपों की सबकी, और अंत में पूछते हैं क्या हम दासियों की कभी चर्चा करते हैं। स्मरण तो नहीं करते हमें, हम लोग स्मरण करने लायक नहीं है, लेकिन कदाचित कभी कोई बात चलती है तो चलाते हैं क्या है। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं गेह शब्द से घर के भीतर स्थित सारी वस्तुएं और माता पिता, माता पिता के द्वारा किया गया लालन पालन और बाल लीला वगैरह सब इसमें सुधे, गेह शब्द से सारा बोधित हो रहा। कभी वो याद करते हैं कि माँ जसोदा उनका कैसे पालन करती थी, ये नंद बाबा कैसे उनसे प्रेम करते थे, कैसे खिलाना पिलाना सब कुछ करना, गेह शब्द से सारा तात्पर्य। ऐसा नहीं कि केवल दीवार और छत याद करते हैं कि नहीं, और कुंजों में भी अपने घरों में जो मेरे साथ जो विहार किए हैं गोपीजनों के साथ वो सब याद आती है कि नहीं। गेह शब्द से कुंज घर और उनमें हुई लीलाएं लालन पालन रास नृत्य आदि सब आ गया। मधुपुर्जा मास्ते ब्रजम इव तामपि त्यक्त्वा अन्यत्र गतः किम्। मधुपुरी में ही है कि ब्रज जैसा मधुपुरी को भी छोड़ करके कहीं और जगह चले गए, क्योंकि गए थे पढ़ने के लिए। ऐसे ही ये संवाद मिल गया है राधा रानी को ब्रजवासियों को कि कृष्ण मथुरा में आ गए हैं पढ़ करके। तो ये प्रश्न सबसे पहले कर रहे हैं आशंका करके कि जैसे पढ़ने के लिए अवंतिका गए थे तो फिर किसी कार्य बसात कहीं और जगह तो नहीं चले गए हैं ना। मथुरा में रहने पर उद्धव या भ्रमर हमको बहुत सांत्वना रहती है, बहुत कम दूरी है, संभावना बनी रहती है आने की, लेकिन दूर चले जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। इतः समीपवर्तिन्याम तत्र पुर्याम तस्य स्थिति अत्रागमन संभावना उत्पादयति। यहाँ जब मधुपुरी में रहते हैं तो उनके आने की संभावना उत्पन्न होती रहती है, इस अभिप्राय से बोल रहे हैं। जद्वा सुखम आस्ते इति अनुक्ते अस्मत् प्रणय स्मरण व्याकुलो अनुरोध बसा देव तत्रास्ति। अथवा हैं केवल यही अर्थ किया जाए हैं सुखम आस्ते हैं ही, क्यों कि हमारा स्मरण करते होंगे, हमारा स्मरण करके व्याकुल हो जाते होंगे, इसी अनुरोध से अभी वही होंगे। जता आर्जस्य जदभीर दुर्विनीत प्रतार्ज मानत्वात् सारल्य समुद्रस्य श्री ब्रजराजस्य तदेक प्राणस्य पुत्र। चक्रवर्ती पाजी अर्थ करते हैं कि आर्ज पुत्र का क्या अर्थ हुआ। राधा रानी कहते हैं कि हमारे प्रियतम आर्ज पुत्र हैं, परम सरल नंद बाबा के पुत्र हैं, लेकिन वो जदुवंशी जादव बड़े धूर्त हैं, उनको ठग करके फुसला करके वहीं रखे हुए हैं, नहीं तो कब का वे आ गए होते ब्रज में। वे लोग राजनीति जानते हैं जादव लोग, फंसा लिए हैं उसको उनको, नहीं तो हमारे प्रियतम तो आर्ज के पुत्र हैं, सरल व्यक्ति के पुत्र हैं, रीजू बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति के, वो कब का आ गए होते लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग फंसा लिए, मतलब कंस को मारे हैं तो अब राज दखल करते हुए जैसे तैसे तो कृष्ण को देखने के लिए रोक लिए उनके, नहीं इसके बिना मर जाएंगे, इसका सुंदरता देखेंगे, ये देखेंगे, और वो सब नहीं आने दिए। हंत हंत मत पिता पे माम ब्रजम ने तुम ना सकम सदम तत् गंतुम कम उपाय करो। हमारे प्रियतम सोचते रहते होंगे कि हमारे पिताजी इतने सरल हैं, वे हमको नहीं ले जा पाए ब्रज में, तो अब मैं कौन उपाय करूं। तो वे स्वविलंबम असहमानत्वम प्रस्थापयति, वे नहीं आ पाए, विलंब किए लेकिन सहन नहीं हुआ, इसी से कम तुमको भेजे हैं दूत। वो आने के लिए व्याकुल होंगे मैं जानती हूँ, लेकिन वो लोग बंद कर रख लिए होंगे। चकारात गोवर्धनादि संग्रह,
फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ। हे गोकुल के चंद्रमा, हे गोकुल के नाथ, आप फिर से ब्रज में आ जाइए और सुख से रहिए। हमने जो भी आपको कष्ट दिया है अब हम नहीं देंगे कष्ट, आप मथुरा मत रहिए, आप आकर के यहाँ रहिए।
बहुरिन तुम ही जगाय पठबो, बहुरिन तुम ही जगाय पठबो, गोधनन के साथ फिर ब्रज, गोधनन के साथ फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ।
में पत्थर पहाड़ में जहां तहां गाय चराना पड़ता था, तो अब हम नहीं आपको भेजेंगे।
बर जौन माखन खात कब हूँ दईहो देन लुटाए, बर जौन माखन खात कब हूँ दईहो देन लुटाए, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहुं। कबहुं न दईहो उराहनो जसुमती के आगे जाय, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ।
आपके माँ की तो बात हम नहीं कहते, हो सकता है कभी बांधने आपको चले, लेकिन अब हम रस्सी नहीं देंगे उसको।
दौरी दामन देऊंगी लकुटी न जसुमती पान, फिर ब्रज बसहुं गोकुल नाथ।
जैसे उस बार आपको जसोदा बांध रही थी तो हम लोग दौड़ दौड़ करके रस्सी दे रहे थे उसको बांधने के लिए, तो अब हे प्रियतम हम कभी नहीं देंगे, आप कुछ भी कीजिएगा हम अब रस्सी नहीं देंगे आपको बांधने। और जो सोदा से हम लोगों ने कह दिया है कि कभी मत बांधना, तो भी रो रो करके कह रही है कि अब नहीं बांधेंगे कभी भी। लकुटी न जसुमती पान, और जसोदा के हाथ में हम छड़ी नहीं देंगे आपको डर पाने के लिए।
दौरी दामन देहूंगी लकुटीन जसुमती पान, चोरी न देहू घर के अवगुन न कही हूँ आन, फिरी ब्रज बसहुं गोकुल नाथ।
आप कितना भी चोरी करेंगे आपके चोरी को हम लोग उघारेंगे नहीं, किसी से नहीं कहेंगे। चोरी न देहूं उघार की अवगुण न कहूं,
आप कुछ भी अवगुण करेंगे, कुछ भी गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, हम किसी से नहीं कहेंगे। अब
परिहान तुम सो मान हठ हठिहान मांगत दान फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहु गोकुल।
अरे प्रियतम, अब हम आपसे कभी भी मान नहीं करेंगे। मान मनाने में बहुत परिश्रम पड़ता था, अब हम कभी मान नहीं करेंगे। करिहान तुम सो मान हट, कभी मान नहीं करेंगे। यदि कदाचित स्वभाव बस मान हो भी गया तो अब एक बार प्यारी कहेंगे उसी समय मान जाऊंगी, क्यों हट नहीं करूंगी।
करिहान तुम सो मान हठ हठिहान मांगत दान।
और आप जब दान मांगेंगे, दान घाटी में गोवर्धन में दही घी या दूध, तो मैं अब हठ नहीं करूंगी नहीं देने का। जब ही आप मांगेंगे मैं दे दूंगी, बल्कि मैं बिना मांगे आपके लिए लाऊंगी दही घी माखन जो कुछ भी है मैं लाऊंगी। मैं कभी अब हठ नहीं करूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी।
कही हौन मृदु मुरली बजावन करन तुम सो गान फिर ब्रज बसहु गोकुलना।
हे प्रियतम, हम अब कभी आपको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि बांसुरी बजाने में आपको तीन जगह से टेढ़ा खड़ा होना पड़ता था, बहुत परिश्रम पड़ता था।
निहौन मृदु मुरली बजावन करन तुम सो गान।
और आपको गाने के लिए नहीं कहेंगे, आप बहुत आलाप लेते थे, हम लोग कहते थे और सुनाइए और सुनाइए। कभी बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगे, कभी गाने के लिए नहीं कहेंगे आप आइए, बल्कि हम गीत गागा करके सुनाएंगे।
कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल।
और मैं आपको कभी भी अपने चरण में महावर लगाने के लिए नहीं कहूंगी।
कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल। कही हौन करन सिंगार बट तर बसन जमुना खूल फिर ब्रज बसहु गोकुल ना।
प्रियतम, मैं अपने पैर में आपसे मेहंदी लगाने के लिए नहीं कहूंगी और अपनी बेड़ी नहीं गुथवाऊंगी। गुहन बेनी फूल, अपनी बेड़ी नहीं गुथवाऊंगी और उसमें फूल लगाने के लिए नहीं कहूंगी। और बट वृक्ष के नीचे श्रृंगार बट में बैठकर आपसे श्रृंगार नहीं करवाऊंगी। आपको कभी नहीं कहूंगी श्रृंगार करने के लिए। और आपको कभी भी मैं जमुना के तट पर जहां तहां नहीं बैठाऊंगी। आप जब जाना चाहें अपने घर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि नहीं बैठो जमुना तट पर, चलो कुंज में, कभी नहीं कहूंगी। इस तरह वास्तव में सूरदास जी का ये चमत्कार है, कमाल है। ऐसा नहीं करूंगी वे ये कह रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि भगवान ये सब करते थे। यहाँ
कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल। कही हौन करन सिंगार बट तर बसन जमुना कूल फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ। भुज भूषणन जुत कंध धरी के, भुज भूषणन जुत कंध धरी के रास नृत्य न कराऊं हाँ संकेत निकुंज बसी कै दूती मुख न बुलाऊं फिर ब्रज बसहूं गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहूं गोकुल एक बार जु दरस दिखवहूं प्रीति पंथ बसाए चावर करूं चढ़ाए आसन नयन अंगन लाय फिर ब्रज बसहूं गोकुल ना देहूं दर्शन नंद नंदन देहूं दर्शन नंद नंदन मिलन ही की आस फिर ब्रज मिलन ही की आस सूर प्रभु की कुंवर छवि को सूर प्रभु की कुंवर छवि को मरत लोचन प्यास फिर ब्रज बसहूं गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहूं गोकुलनाथ
जदपि मैं बहुत जतन करे जदपि मैं बहुत जतन करे तदपि मधुप हरिप्रिया जानिक तदपि मधुप हरिप्रिया जानिक तदपि मधुप हरिप्रिया जानिक तदपि मधुप काहुन प्राण हरे काहुन प्राण हरे जदपि मैं बहुत जतन करे जदपि मैं बहुत जतन करे
क्या क्या जतन किया आपने खूब सुगंधित पुष्पों को लेकर के अपने हाथ से सेज पर बिछाई और उसी पर सोई फिर भी नहीं मरे
सौरभ जुत सुमनन ले निज कर सौरभ जुत सुमनन संतत सेज धरे संतत सेज सन्मुख होती शरद शशि सजनी सन्मुख होती शरद शशि सजनी तौ नयांग जरे तौ नयांग जरे जदति मैं बहुत जतन करे जदति मैं बहुत जतन करे
बहुत अच्छे अच्छे फूल सुगंधित चुन करके अपने सेज पर बिछाए तो ये कोई मरने का साधन है क्या लेकिन विरहिणी के लिए अपने प्रियतम के वियोग में फूल ही अंगार जैसा लगता है तो राधा रानी सोचती हैं कि अगर मैं बहुत अच्छा अच्छा फूल बिछाऊंगी और सोऊंगी तो ये फूल मेरा प्राण ले लेगा लेकिन ये भी नहीं लिया प्राण और शरद काल के पूर्णिमा की चांदनी में मैं घर से बाहर रात भर रही फिर भी ये चंद्रमा नहीं जलाया मुझको जबकि एक क्षण में वो जला देता है लेकिन मैं रात भर चांदनी में रही हमको नहीं जलाया मैं आत्महत्या करना चाहती थी ये हमको नहीं मार रहा है
सन्मुख होती शरद शशि सजनी सन्मुख होती शरद शशि सजनी तौ नयंग जरे जदपि मैं बहुत जतन करे जदपि मैं बहुत जतन करे
चंद्रमा की किरणों में, और वो भी शरद काल और भी पूर्णिमा, कि मैं बहुत बार बार या रात भर चंद्रमा में रही लेकिन ये भी नहीं अंग जराया। चातक मोरे कोकिला मधुकर, चातक मोरे सुर सुन श्रवण भरे, सुर सुन श्रवण भरे। वही चातक पपीहा और मोर कोयल और भौंरा जिनकी बोली सुनते ही मेरे हृदय में आग लग जाती थी, मरने की स्थिति हो जाती थी, लेकिन मैं इस बार जब मरने का निश्चय की तो जा करके कान खोल करके चातक की बोली सुनती थी, मोर की ककूक सुनती थी, कोयल की बोली सुनती थी और भौंरे की कि अभी भी मैं मर जाऊं। सुनी सुनी श्रवण भरे अपने कान में भरती थी फिर भी नहीं मरी।
सादर है निरखती रतिपति को, सादर है निरखती रतिपति को, मैं कन पलक परे, मैं कन पलक परे, निस दिन रटती नंद नंदन या, निस दिन रटती नंद नंदन उरते छिनन तरे, उरते छिनन तरे।
हमारे प्रियतम हमारे हृदय में इसलिए टीके हैं कि कोई मारने न पावे हमारे प्रिया को, चंद्रमा न प्राण ले ले या कामदेव न प्राण ले ले, इसलिए कृष्ण हमारे हृदय में अड़े हुए हैं और क्षण भर भी छोड़ करके नहीं जाते।
अति आतुर चतुरंग चमु सजी, अति आतुर चतुरंग चमु सजी, अनंगन सर संचरे, अनंगन सर संचरे।
और अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर भी अनंग बाण नहीं चला रहा है, सेना सजा लिया है मारने के लिए लेकिन फिर भी बाण नहीं चला रहा है।
जानती नाही कवन गुन यातन, जानती नाही कवन गुन यातन, जाते सब ये डरे, जाते सब ये डरे, सूरदास सकुचन श्रीपति के, सूरदास सुभटन बल विसरे, यद्यपि मैं बहुत जतन करे। काले पारे कोस चली चली थक गए, पाय सुख के कसाले परे, ताले परे न सके, रोय रोय नैनन में हाले परे, जाले परे मदन के पाले परे, प्राण पर बस के हरिचंद अंग हूँ हवाले परे, रोगन के सोगन के भाले परे, तन बल खस के पगन में छाले परे, नाघिबे को नाले परे, तऊ लाल लाले परे, रावरे दरस के तऊ लाल लाले परे, रावरे दरस के थाकी गति अंगन की मति पर गई मंद, सुख झांझरी शिव के देह लागी पियरान, बावरी सी बुद्धि भई हसी काहू छीन लई, सुख के समाज जीत तीत लागे दूर जाम,
हरि चंद्रावरे बीरह जग दुखमय हरि चंद्रावरे बीरह जग दुखमय भयो कछु और हो न हार लागे देख राम नैन कुमिलान लागे बनहु अथान लागे आओ प्राण नाथ अब प्राण लागे मुरझान आओ प्राण नाथ अब प्राण लागे मुरझान।